ध्यान के बारे में है तो उनको पहले निपटाएंगे और बाकी के प्रश्नों को बाद में लेंगे। मैं कभी कभी ध्यान करता हूं तो मुझे अधिकतर अलग अलग फूल दिखाई दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? वह फूल जो मैंने कभी देखे भी नहीं। इस शिविर में मुझे ऐसा ज्यादा अनुभव हुआ।
इंग्लिश में आपने
जो है वो मैं पढ़ के बताऊं।
First question is, whenever I meditate, I see flowers in my meditation, and I see such flowers which I never seen in my practical life.
What's the question?
That's it.
Yeah. Well, it sounds very fortunate to have that experience.
तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सुदैवी हैं, आपको ऐसा अनुभव आया है।
And all sorts of experiences do come in meditation.
और कई प्रकार के अनुभव ध्यान साधना में आ सकते हैं।
Yes, all sorts of different experiences do come in meditation.
तो कई प्रकार के अलग अलग अनुभव ध्यान साधना में आते हैं।
Some people seem to have a lot of those experiences, some people don't seem to have many.
तो कुछ लोगों को बहुत ऐसे अनुभव आते हैं ऐसा लगता है और कुछ लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं आता।
I can't say I've ever seen flowers in my meditation.
अब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने कभी अपने ध्यान साधना में फूल देखे हैं।
So if you have those experiences, that's very good.
तो अगर आपको ये अनुभव आता है तो बहुत अच्छी बात है।
If you don't have those experiences, it doesn't matter.
अगर आपको ऐसे अनुभव नहीं आते तो उसमें कोई समस्या नहीं है।
Even if you do have those experiences, well, just keep meditating.
भले ही आपको ऐसे अनुभव आए, आप केवल ध्यान करते रहिए।
You don't get carried away by that.
तो आप इससे मतलब बहते हुए मत जाइए।
And you just keep on meditating.
और आप ध्यान करते रहिए।
दूसरा प्रश्न है, मैत्री भावना में हम सभी सजीवों की सुख और उनके विकास की भावना प्रकट करते हैं। सभी रोग के जंतु वायरस जिससे रोग फैलता है उनकी कामना करते हैं, वे हमारा बॉडी का नाश करते हैं, उसकी वृद्धि की कामना कैसे कर सकते हैं जो वृद्धि होकर हमारा शरीर का नाश करते हैं।
In metta bhavana, we spread our metta and good wishes towards all human beings or animals. And there are viruses which create diseases, and if they grow, then they kill our body. So how we spread our metta, give our metta to them, because when they destroy our body.
I think Chandrabodhi should answer that question.
मुझे लगता है कि इसका जवाब चंद्रमा जी ने देना है।
I suppose the interesting question is, well, what do you feel towards non-human living organisms?
तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो अमानवीय जो मानव नहीं है ऐसे प्राणियों के बारे में आपको क्या लगता है?
But do you feel angry with that virus for giving you a cold?
तो जब वो वायरस आपको जुकाम तैयार करता है तो क्या आप उसके प्रति गुस्सा करते हैं?
Does that really make sense to be angry with a cold virus?
तो ये जो जुकाम के जो वायरस होते हैं उनके ऊपर गुस्सा करने में कोई अर्थ है क्या?
In the Buddhist teaching it said there are different kinds of patience, of shanti.
बौद्ध शिक्षा में अलग अलग प्रकार की शांति कही जाती है।
And there's patience towards people, of course.
और निश्चित रूप में लोगों के प्रति हम धीरज रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं।
But there's also that is patience with people who are acting in a way that's painful or hurtful.
तो ऐसे लोगों के प्रति हम सहनशीलता करते हैं जो हमसे हमें दुख पहुंचाने का नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।
But there's also patience towards nature.
और इसके साथ ही प्रकृति के प्रति हम धीरज रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं।
So for instance, the other night it suddenly poured with rain.
तो उदाहरण के तौर पर एक रात में बहुत बारिश हुई।
And some of you were in that tent which got very wet. So did you just raise your fist and say, you know, angrily to the rain, no, stop? Did you feel angry with the rain? Well, if you did, it doesn't make sense, really. It's the nature of rain to fall from the sky. The rain doesn't intend to wet you. The rain just does what rain does. So we should be patient towards it. Not become angry with it. It doesn't make sense to be angry with it. And it's the same with viruses. It's just the nature of the virus to get inside the bloodstream and multiply itself. The virus doesn't think, ah, there's a good person to get into the bloodstream of. I think I'll give him a really bad cold. That just doesn't make sense to become angry with inanimate entities. At the same time, it doesn't quite make sense to sort of wish that virus well. As far as we know, that virus isn't conscious. And so it doesn't really make sense to think of it as a person. But at the same time, we can have a sort of positive attitude to nature. We can appreciate nature. We can even appreciate viruses. They're extraordinary, they're remarkable organisms. So I don't think it's necessary to think in terms of directing metta towards viruses or of directing hatred towards them. I think really metta is appropriate towards those, well, towards human beings, of course. And towards those higher animals that have a definite sense of pain and suffering. But I think below that, it doesn't make much sense to think in terms of metta, at least in the ordinary way. But yes, I think we should have an appreciative attitude towards nature. Even a virus has its place in things. At the same time, well, we should try to get rid of those viruses that do harm to human beings. But without hatred.
अगर किसी को मांस खाने की प्रबल इच्छा हो और वह केवल शील का पालन करने के लिए अपना मन मार रहा है तो क्या उसके मन की हिंसा नहीं हुई? कृपया कुछ समाधान करें।
So there is a teaching in five precepts that panadipata we shouldn't kill. So because of this precept, one stops eating meat, even though he desires to eat meat. To practice this sila, he stops eating and he manko marna. he just subsides his desire of eating meat. So isn't it violence against himself? He's practicing violence against himself by killing his own desire to eat meat.
Well, In a way, this is the same problem as the previous question, isn't it? One's thinking of desire as if it was a human being. Well, the desire to eat meat as a human being.
Do you see what I
mean? The problem is that one is thinking that any stopping of anything is violence. But the real issue is of not causing harm to creatures that can feel pain.
It's
trying not to cause pain and suffering to others. Well, you can't really talk of your desire as if it was in itself a sentient being.
Do you see what
I mean? So it appears to be a question, but it isn't really one. We think in terms of something being stopped, and then we ascribe a personality to that thing. But a desire is part of your being. If you choose not to follow through that desire, well, it's you that will experience the pleasure or pain that goes with it. Now, of course, sometimes when you check some desire of your own, that does cause you some pain. Well, for instance, I used to be quite addicted to smoking cigarettes. And I decided at a certain point I would stop. Any of you who've been addicted to cigarettes will know that that's very uncomfortable. You feel very sort of uneasy. You can't stand still and you want something to put in your mouth. You start chewing your fingernails. So it's quite a painful feeling. At least quite uncomfortable. But of course, you're stopping that desire because you have a stronger desire to be healthy, to be fit and well. And in a way, it's the same with giving up meat. You've got a desire to eat meat. Well, I can't remember eating meat, but I used to eat it probably 35 years ago. And I remember it used to be quite tasty. But then you also want to be non-violent. You have a desire to live in a peaceful and harmless way. So you have to decide which desire is more important to you. And if you come to the conclusion that the most important desire is to live a healthy to live a healthy life, well then you stop to live a non-violent life, then you stop eating meat. If you decide that your strongest interest is in the taste of meat, well then you give up your desire to be non-violent. But you can't have both.
लेकिन दोनों इच्छाएं एक साथ आप नहीं रख सकते.
So you have to decide which is most important to you.
इसलिए आपने ये तय करना है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है.
And the other one, well, yes, you will experience some pain from giving that up.
तो कोई भी एक इच्छा छोड़ने के लिए आपको कुछ दुख तो सहना ही पड़ेगा.
And this is the way our lives go.
और इसी तरह से अपना जीवन चलता है.
We quite often have to give up one thing that we like because there's something else that's more important to us.
तो हमेशा किसी एक चीज को हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि दूसरी चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है.
Maybe before you came on this retreat, there was a new Hindi film coming out.
तो हो सकता है कि इस शिविर में आने के पहले कोई नई हिंदी फिल्म जो है आ रही हो.
Maybe when you go back to your home, that film would have gone on to somewhere other place.
अभी आप घर जाएं तो वो फिल्म वापस चली गई हो.
So you decided it was more important to be on this retreat than go and see that film.
तो शायद आपने ये तय किया होगा कि शिविर में आना ज्यादा महत्व का है उस फिल्म देखने जाने के.
So you can't say that didn't lose something.
तो इस तरह से हम ये नहीं सोच सकते कि हमने कुछ खोया.
But you got something that was more important to you.
लेकिन हमारे पास ऐसी कुछ बात हमें मिली है जो ज्यादा महत्व की है.
So if what's more important to you is feeling sensitivity and maitri for all other creatures, well then you'll give up meat.
तो अगर आपके लिए प्राणियों के प्रति मैत्री भावना अहिंसा ज्यादा महत्व की लगती है तो ये मांस खाना बंद करिए.
If what's more important to you is having something good to chew, then you'll carry on eating meat.
अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि ये जरा अच्छी चबाने वाली चीज आपको ज्यादा महत्व की लगती है तो आप खाते रहिए.
दूसरा अगला प्रश्न है, रोज ध्यान करने आवश्यक आहे का? हर रोज ध्यान करना जरूरी है क्या?
Is very daily
necessary. Necessary for what?
तो ये किस लिए जरूरी है?
If presumably what you want to do is to make fairly steady and reasonably rapid progress, well, I think it is necessary.
अगर आप नित्य रूप से और अच्छा विकास करना चाहते हैं तो नियमित रूप से ध्यान करना जरूरी है.
If you want to experience a refined and concentrated mind, well then more regularly you practice the better.
तो अगर आपको मन की ऊंची और शुद्ध अवस्था का अनुभव लेना है तो इसलिए आप अगर हर दिन ध्यान करते हैं तो अच्छा होगा.
If that's not so important to you or you just can't do it, well then you'll have to make progress some other way.
अगर आपको ये महत्व का नहीं लगता है, आप नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा तरीका ढूंढिए.
Meditation I think is quite important in spiritual life.
आध्यात्मिक जीवन में मुझे लगता है कि ध्यान साधना काफी महत्वपूर्ण है.
But if you're not able to do it regularly, well, you can still make progress.
लेकिन अगर आप हर दिन ये नहीं कर सकते कि फिर भी आप कुछ विकास कर सकते हैं.
But the difficulty is getting the change to take place at a deep enough level.
लेकिन समस्या ये है कि हमारे अंदर परिवर्तन जो है बहुत गहराई में होना चाहिए.
It's easy enough for our intellects to be involved.
हमारी बुद्धि को शामिल करना बड़ा आसान है.
It's easy enough for our bodies to be involved.
हमारे शरीर शामिल कर देना बड़ी आसान बात.
But to involve our minds very deeply in spiritual life is much more hard.
लेकिन हमारे मन को गहराई से आध्यात्मिक जीवन में शामिल करना बड़ी मुश्किल बात.
To change the depths of the mind is much harder.
और हमारे मन की गहराई को बदलना बड़ी मुश्किल बात.
And if you are going to make that change, then meditation is probably necessary.
और अगर आप ये बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके लिए ध्यान शायद बहुत जरूरी होगा.
And that probably means meditating regularly.
इसका मतलब आपको नित्य रूप से हर दिन ध्यान करना पड़ेगा.
But I imagine that some of you are a bit concerned because you're going to go back and you don't know how you're going to be able to meditate every day.
लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चिंता होगी कि शायद आपको यहाँ से जाने के बाद नित्य रूप से ध्यान करना शायद मुश्किल हो जाएगा.
Well, I can quite appreciate that. I know that life is quite difficult.
तो मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. मुझे ये भी पता है कि जीवन मुश्किल है.
You may feel, well, I just don't know when I would meditate.
और शायद आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से समय ध्यान कर सकता हूँ.
Well, if you think a bit, you probably could make more time.
अगर इसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचते हैं तो शायद आप अच्छा कोई समय निकाल पाएंगे.
But some of you still may find it very difficult to get time to meditate.
लेकिन आप में से कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगेगा कि समय को ध्यान करने के लिए समय कैसा निकालें.
Well, don't feel bad about it.
तो इसकी वजह से आप अपने आप से बुरा मत समझिए, मानिए.
Meditate whenever you can.
जब भी आप ध्यान कर सकते हैं करिए.
And the rest of the time try to remain mindful.
और बचे हुए समय में और स्मृतिमान रहने की कोशिश करिए.
Or at least just at some point during the day just sit quietly.
या कम से कम दिन के किसी समय आप शांत बैठने की कोशिश करिए.
So yes, I think that if you want to make steady progress fairly rapidly, regular meditation is necessary.
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको तेजी से और नित्य रूप से विकास करने की इच्छा है तो नियमित ध्यान करना, हर दिन ध्यान करना जरूरी है.
If you can't do that, well, just do the best you can.
अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जो कुछ अच्छा आप कर सकते हैं करिए.
Get on retreat whenever you can.
जब भी संभव हो आप शिविर में आइए.
Or even just meditate once a week.
या सप्ताह में एक दिन ध्यान करने की कोशिश करिए.
And you'll make some progress that way.
और इस तरह से आप कुछ तो विकास कर पाओगे.
And don't feel bad about it.
और इसके बारे में बुरा मत मानिए.
Just come to a conclusion what you can do and just do that.
और ऐसा निर्णय लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं सही में और उतना करिए.
कहते हैं हर व्यक्ति को गुस्सा आना वास्तविक है. सिद्धार्थ को जब गुस्सा आता था वो किस प्रकार का था, प्रेम मूलक या द्वेष मूलक?
It is said that getting angry is obvious. So when Siddhartha used to get angry, what kind of anger he had? Love-based or hate-based?
Mujhe malum nahi. Malum. Yes, I don't know. I wasn't there at the time. No, I appreciate the question. But I don't really know to what it refers.
त्याच्यावर कार्य करण्याकरिता पारंपरिक गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यात शेवटची बाब सांगितली आहे की शेवटी भगवान बुद्धाच्या चरणी शरण गमन करणे. तर हे शरण गमन करणे म्हणजे त्या अडथळ्यात होऊन शरण गमन करणे म्हणजे तरी काय? कृपया शरण गमनाची व्याख्या माहीत आहे पण त्या प्रकाराचा अर्थ कळला तर बरे होईल. म्हणजे एखादी समस्या आपल्या ध्येयाआड येत असेल तर कितीही कार्य करून ती विसरली जात नाही तर शेवटी शरणगमन करणे म्हणजे काय करणे हे प्रत्यक्ष कळाले तर.
Just gonna have a word with Chandra Bodhi if you could. Chandra Bodhi, can you try and weed them out a bit more? Because they're not very good questions so far. Can you try and find ones that actually are real questions, so not funny or anything like that?
Yeah. Let's say it in Hindi first.
Okay.
तो सवाल यह है कि ध्यान साधना में जब हम कार्य करते हैं तो एक आखिरी बात बताई जाती है कि अगर कोई बाधा ध्यान से जाती ही नहीं है तो आखिरी में बताया जाता है कि आप शरण गमन करिए. तो इसका मतलब क्या है?
In remedies in meditation.
In the what, sorry?
In meditation, working in meditation. The last thing is to go for refuge.
Right, if all else fails.
All else fails.
Yeah.
So what is this exactly means?
That's a good question. Presumably yesterday Chandra Bodhi took you through the different ways in which you try to deal with hindrances.
तो मुझे लगता है कि चंद्र बोधी ने अलग अलग ढंग से आप इन बाधाओं पर कैसे कार्य कर सकते हैं इसके बारे में बताया था.
I'm afraid I can't remember what they all are now.
अभी मुझे पता नहीं वो सभी बातें ध्यान में नहीं आती है.
For instance, you just try to let the hindrance float through your mind like a cloud in the sky.
उदाहरण के लिए अपने मन से आप इन बाधाओं को जैसे आसमान से बादल बहते चले जाते हैं उस तरह से आप छोड़ देते हैं.
Or you apply the opposing force to that hindrance.
या तो उस बाधाओं के प्रति आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं.
But the fact is that sometimes you work as much as you can, but you just can't get the hindrance away.
तो वास्तविकता यह है कि ध्यान साधना में आप जितनी कोशिश करना है करते हैं लेकिन ये जो ध्यान की बाधा जो होती है वो नहीं जाती.
And you know you can't get it out of your mind.
और आपको पता चलता है कि आपके मन से ये बात नहीं जा रही.
But at least you can keep the Buddha in your mind.
लेकिन कम से कम आप बुद्ध को अपने मन में रख सकते हैं.
So for instance, let's take hatred.
उदाहरण के लिए आप द्वेष को लीजिए.
Maybe you just find yourself thinking of an enemy.
तो उदाहरण के लिए आप आपके मन में कोई शत्रु का विचार आ रहा
है. And you think of all the things you'd like to do to that enemy.
और आपके मन में सब विचार आ रहे हैं कि मैं उसका ये करूंगा, उसका वो करूंगा वगैरह.
And instead of concentrating on the breath, you're thinking of what you can do to that enemy.
और श्वास पर एकाग्र होने की बजाय उस शत्रु का आप क्या करेंगे इस विचार में आप खोए रहे.
So you do everything you can to get that thought out of your mind.
और आप पूरी कोशिश करते हैं कि ये विचार आपके मन से निकल जाए.
And it just won't go away.
लेकिन ये विचार निकल जाए.
Whatever you do, back it comes.
आप कुछ भी करो वो विचार फिर से वापस आते हैं.
But at the end, at least what you can do is keep hold of the Buddha.
लेकिन कम से कम आखिर एक बात आप कर सकते हैं कि आप बुद्ध को पकड़े रहे.
So those thoughts are coming through your mind.
तो जैसे आपके मन से विचार आ रहे हैं.
And it's as if you're sort of saying, well, I'm very sorry, Buddha, I can't get rid of this.
तो आप कहते हैं कि बुद्ध मुझे बड़ा खेद होता है कि विचारों से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है.
So I just put myself at your feet.
तो मैं अपने आप को आपके चरणों में रख देता हूँ.
For the time being, I can't deal with it.
अब इस घड़ी में मैं इसके साथ दोहात नहीं कर सकता.
So in this way, you keep hold of some connection with something higher.
इस तरह से आप किसी ऊंची बात से अपना संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते हैं.
Even though you're lost in unskillful thoughts.
भले ही आप इस तरह से किसी अकुशल विचारों में बह गए हैं.
That sometimes happens to us, doesn't it?
ऐसा कभी-कभी होता है.
We just get overwhelmed with fear or craving or hatred.
तो हम सीधे किसी तृष्णा से या द्वेष की वजह से ऐसे विचारों में एकदम वो विचार हमारे मन पर सवार हो जाते हैं.
And there just doesn't seem to be anything we can do.
और ऐसा लगता ही नहीं कि इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं.
Well, in your mind, you just keep thinking of the Buddha, Dhamma, and Sangha.
तो आप अपने मन में इस बुद्ध धर्म और संघ के बारे में केवल सोचते रहते हैं.
And a traditional way in which you can do this is by keeping saying a mantra.
और पारंपरिक ढंग है इसे और कार्य करने का वह है आप इस मंत्र का पठन करते रहते हैं.
And that mantra keeps your mind connected to the Buddha.
और इस मंत्र के माध्यम से आप अपने मन को बुद्ध के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते हैं.
So that's what I understand by this approach to the hindrances.
तो बाधाओं पर कार्य करने के इस दृष्टिकोण को मैं इस तरह से समझता हूँ.
And I think probably all of us at times find ourselves in a situation where we cannot master our minds.
तो हम में से हर एक को यह अनुभव आता है कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते.
But at least we can keep going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
लेकिन कम से कम ये कर सकते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाना हम कायम रख सकते हैं.
आनापान सति व मैत्री भावना ध्यान करीत असताना ध्यानामध्ये धम्म चिंतन किंवा चांगले विचार वेळोवेळी उत्पन्न होत असतील तर त्याला कोणता अडथळा समजावा. आणि दुसरा प्रश्न आहे ध्यान करीत असताना कधी कधी शरीर का हलते.
टू क्वेश्चन्स. आर दे क्वाइट सेपरेट क्वेश्चन्स?
Yeah.
Okay, deal with them separately then.
So, first question is, while practicing Metta Bhavana or Anapanasati, some thoughts of reflection on Dhamma or some good thoughts come in mind.
Mm-hmm.
And what kind of hindrance that would be?
Ah. So, it depends on the nature of the thoughts.
So, aapke vichar ka swaroop kaisa hai, us par ye avalambhi hai.
If you find that you're really thinking deeply about the Dhamma, well, that's not a hindrance at all.
अगर आपको लगता है कि आप धम्म पर बहुत गहराई में सोच रहे हैं, तो ये कोई बाधा नहीं है.
But if it's just a distracted thinking about this, thinking about that, well, that's distraction.
लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, कभी उसके बारे में सोचते हैं, तो ये जो है, ये बाधा हो सकती है.
So I think that if you find that your mind starts to reflect quite deeply on Dhamma, well, let yourself do that.
अगर आपको लगता है उदाहरण के लिए कि आपका मन धम्म के चिंतन में बहुत ही गहराई में पहुंचा है तो आप जो चिंतन करते रहिए.
But if you find that your mind is just starting to drift away, thinking about this, thinking about that, even if it's nominally connected with the Dhamma, then just get back to the practice.
लेकिन भले ही कुछ विचार धम्म से संबंधित है लेकिन कभी ये विचार करते हो कभी वो विचार करते हो इस तरह से विचारों में आप भटक रहे हो तो उससे बंद करके आप श्वास पर एकाग्र होंगे.
But I think it does raise the question of reflection on the Dhamma.
तो इससे एक सवाल पैदा होता है धम्म चिंतन का.
I think it's very good if you do get time after each session of meditation just to spend a few minutes reflecting on the Dhamma.
तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि ध्यान साधना के बाद कुछ समय निकाल के धम्म पर चिंतन करना.
If your mind has become quite concentrated, then try to focus it on some Dhamma theme.
अगर आपका मन काफी एकाग्र होता है तो उसके धम्म चिंतन में लगाने की कोशिश करें.
Well, for instance, take the theme of impermanence.
उदाहरण के तौर पर अनित्यता का जो विषय है उसे आप ले सकते हैं.
And just consider impermanence.
और अनित्यता के बारे में सोच सकते हैं.
Reflect on impermanence in your experience.
और आपके अनुभव में जो अनित्यता है उस पर आप चिंतन कर सकते हैं.
And in that way put the concentration to good use.
और इस तरह से आप एकाग्रता का अच्छा उपयोग कर सकते हैं.
Or in the Maitri Bhavana just reflect afterwards, well, all beings are just like me.
और मैत्री भावना में अंत में आप ये सोच सकते हैं कि सभी प्राणी मेरे जैसे ही हैं.
All of them have the Buddha within.
और हम इन सभी में उनके अंदर बुद्ध हैं.
So spend some time after each meditation, if you get the time, reflecting on Dhamma.
तो इसलिए ध्यान साधना के बाद में आपको थोड़ा समय मिलता है तो धम्म पर इस तरह से चिंतन करने में आप लगा सकते हैं.
And this will help you to penetrate much more deeply into the meaning of the Dhamma.
और इस तरह से धम्म का अर्थ सोचने के लिए खोजने के लिए आप गहराई में जा सकते हैं.
If that happens spontaneously in the course of your meditation, well, go with it.
अगर बहुत ही स्वभावतः आपकी ध्यान साधना में ऐसा हुआ है कभी तो उसके साथ में रहिए.
So, दूसरा प्रश्न.
दूसरा सवाल यह है कि ध्यान करते समय कभी कभी शरीर क्यों हिलता है. While meditating, sometimes why body shakes.
Body shakes, yeah. Yeah. Yes, when you're meditating, sometimes there are some quite strange bodily experiences.
कभी-कभी ध्यान करते समय काफी विचित्र शारीरिक अनुभव आ सकते हैं.
Because your consciousness is beginning to function in a different sort of way.
क्योंकि आपकी जागृति जो है, विज्ञान जो है, ये कोई अलग ढंग से वहाँ पर कार्य करना शुरू करता है.
One of the things that happens is that energy which has been blocked gets released.
एक बात होती है कि जो बंदिश शक्ति होती है वह खुली हो जाना होना शुरू होता है.
It's as if we hold in our bodies various tensions.
एक तरह से हमारे शरीर में कोई तनाव हम पकड़ के रखते हैं.
And some of those tensions are to do with our experience in life.
और इसमें से कुछ तनाव जो है हमारे जीवन से संबंधित होता है.
With perhaps things that have happened to us in the past.
या अपने पुराने जीवन में कोई अनुभव आया है उससे यह संबंधित हो सकता है.
And they seem to be sort of stored in the body.
और ऐसा लगता है कि आपके शरीर में जैसे कि बंद हुए हैं.
And when you start to meditate, you release those tensions.
और जब आप ध्यान साधना शुरू करते हैं तो ये जो तनाव है इससे आप मुक्त होना शुरू करते हैं.
So sometimes that leads your body to shake or tremble.
और इसकी वजह से कभी कभी आपके शरीर हिलता है या कंपन होता है.
But don't worry, it'll stop sooner or later.
लेकिन चिंता मत करिए, ये कभी ना कभी रुक जाता है.
Just, well, don't try to do it, but don't try to stop it.
तो शरीर हिलाने की कोशिश मत करिए, लेकिन अगर हिलता है तो उसको रोकने की कोशिश मत करिए.
Sometimes it can be a bit difficult if you're meditating with other people.
कभी-कभी लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप ध्यान करते हैं तो ये शायद मुश्किल होगी.
You can feel that you're shaking and maybe you're disturbing other people.
और शायद आपको लगता है कि आप हिल रहे हैं और दूसरों को तकलीफ हो सकती है.
But well, if you are, then maybe you need to meditate alone for a bit.
अगर आप हिल नहीं रहे हैं ध्यान साधना में तो शायद आपको अलग से ध्यान करना
पड़ेगा. You can ask people, was I disturbing you?
आप लोगों को पूछ सकते हैं क्या इससे आपको तकलीफ हो रही थी.
After the meditation, of course.
ध्यान के बाद.
But other things happen.
तो और भी बातें कुछ होती हैं.
I remember when I was first meditating, I'd have an experience as if my body became very, very long.
तो दूसरी बात वह थी, जब मैं पहले ध्यान करता था, मुझे ऐसा अनुभव आया था कि मेरा शरीर जो है बहुत लंबा हो चुका.
As if my head was on the ceiling.
जैसे कि मेरा सर जो है वो छत के छत को लग गया.
Somebody described to me the other day feeling that they were turning round.
किसी ने मुझे बताया था, उसने ऐसा अनुभव आया कि जैसे उसकी स्थिति जो है घूम गई है.
And I remember getting that experience myself.
और मुझे भी याद है, ऐसा मुझे भी कुछ अनुभव आया था.
And I think it's because with meditation you're learning to experience in a quite new way.
तो ये ऐसा होता है क्योंकि ध्यान साधना जब करते हैं तो कोई नए ढंग से अनुभव लेने की आप कोशिश शुरू करते हैं.
So your experience of yourself in your body is unfamiliar to you.
तो आपका अपने शरीर के अंदर का जो अनुभव है आपको अपरिचित होता है.
And especially because your physical experience is beginning to recede to the edges of your conscious experience.
और इसकी वजह से भी ये होता है क्योंकि आपका जो शारीरिक अनुभव है वो आपके जो जागृति है विज्ञान है उसके बाजू में आ जाता
है. That's what you're doing in meditation. You're withdrawing attention from the senses.
तो ध्यान साधना हम यही करते हैं. हमारे जो इंद्रिय जन्य जो अनुभव होते हैं उनसे हम बाहर निकलते हैं.
And so when you're withdrawing your attention from the senses, you don't quite know how to interpret the experience that's coming to you.
तो शुरुआत में जैसे ही आप इंद्रियजन्य अनुभव को अपने शरीर के अंदर के अनुभव में परिवर्तित करते हैं तो इसको कैसा प्रतिसाद देना चाहिए ये आपको समझ में नहीं आता.
So for a little while there's some quite odd experiences. There can be.
और शुरुआत में ये थोड़ा सा विचित्र सा अनुभव लग सकता है.
Not everybody experiences this by any means.
इस तरह का अनुभव कोई हर एक को आता है ऐसी भी बात नहीं.
But by and large they are a sign that you're just beginning to shift from one level of consciousness to another.
लेकिन एक बड़े पैमाने पर यह एक चिन्ह होता है कि आप एक ठोस ऐसे एक तरह की विज्ञान की अवस्था से जागृति की अवस्था से दूसरी में प्रवेश कर रहे
हैं. And as you get used to a more subtle level of experience, those experiences go.
और जैसे जैसे आप इस तरह के सूक्ष्म अनुभव का अनुभव को लेते हैं वैसे वैसे वह शांत होते हैं.
This relates back to the first question about seeing flowers.
तो इसका संबंध पहले अनुभव से भी है जैसे फूल के बारे में सवाल पूछा.
You're learning to be conscious, to be aware in a quite new way.
तो आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कई अलग किसी अलग तरह से जागरूक रहने की.
And this means that things are unfamiliar to you.
और ऐसा लगता है कि ऐसी बातें जो है आपसे कुछ अपरिचित है.
And all sorts of new experiences are going to come to you.
और कई प्रकार के नए अनुभव आपको आ सकते हैं.
Well, there some of them can be very pleasant.
उसमें से कुछ अनुभव काफी सुखद हो सकते हैं.
Some of them can be a bit frightening.
उसमें से कुछ अनुभव जो है काफी डरावने हो सकते हैं.
But you just keep meditating.
और मुझे लगता है आप केवल ध्यान करते रहें.
You just keep coming back to the object of concentration.
आप केवल अपने ध्यान साधना का जो विषय है एकाग्रता का उसमें आते रहें.
And sooner or later you'll pass through that phase.
और कुछ न कुछ समय में आप इस अवस्था से आगे चले जाओ.
It's a bit like a spaceship going into space.
तो जैसे कि ये जो हवाई जो शिप होता है जहाज होता है हवा में जा रहा है.
You know that as it gets nearer and nearer to the edge of the Earth's atmosphere, it gets hotter and hotter.
तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये पृथ्वी की कक्षा के करीब जाता है वैसे ही वो गर्म होते जाता है.
And when it breaks free of the Earth's atmosphere, well, all that stops.
और जब ये पृथ्वी के इस वातावरण के बाहर चला जाता है तो वो जो गर्मी है वो बंद हो जाता है.
So it's a bit like that, trying to break out of the atmosphere of the ordinary everyday consciousness.
तो ध्यान साधना में ऐसी होती है कि हमारा हर दिन का जो सामान्य जागृति का अनुभव होता है उससे हम तोड़ के अंदर जाने की कोशिश.
Just keep doing the practice.
इसलिए आप केवल ध्यान साधना करते रहें.
Don't be frightened, don't worry.
और इससे डरिए मत और चिंता मत करिए.
There's nothing that can go wrong.
और इसमें कोई गलत होगा ऐसी बात नहीं.
And sometimes yes, quite frightening experiences happen.
कभी कभी हो सकता है काफी डरावने अनुभव आ सकते हैं.
Because they're so unfamiliar, you've not had them before.
क्योंकि ये काफी अपरिचित होते हैं ऐसे अनुभव आपने पहले कभी नहीं देखे हो.
But don't worry, just keep concentrating.
लेकिन चिंता मत करिए आप एकाग्र होते रहिए.
I've never heard myself of anybody coming to harm through meditation.
मैंने कभी किसी से सुना नहीं है कि ध्यान साधना से किसी का नुकसान हुआ.
The only thing I've ever seen somebody do is hurt their nose because they fell asleep and fell over.
मैंने एक ही बात सुनी है कि किसी का नाक टूट जाता है क्योंकि ध्यान में सोकर वो नीचे गिर जाता है.
But if you keep awake, you won't hurt yourself.
लेकिन अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपका नाक भी नहीं टूटेगा.
अभी लगता है कि ये सवाल कोई महिला का है. क्या कोई महिला बुद्ध हुई है? यदि हाँ तो कृपया जानकारी
दें. Yes, can women become Buddhas?
Had women been a Buddha before?
Well, different Buddhist traditions say quite different things.
तो अलग-अलग बौद्ध परंपराएं अलग-अलग बातें कहती हैं.
In the basic Buddhist tradition, the Buddha is always a man.
मूलभूत बौद्ध परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि हमेशा बुद्ध पुरुष होते हैं.
But later Buddhists began to feel that was not entirely correct.
लेकिन बाद वाले बौद्धों ने ऐसा सोचा कि ये पूरी सही बात नहीं है.
And they began to create female Buddha figures.
और फिर उन्होंने एक स्त्री के रूप में बुद्ध की रूप निर्माण करने की शुरुआत.
In the Mahayana tradition, there are a number of female Buddha figures.
महायान परंपरा में कई अलग-अलग स्त्री रूप में बुद्ध प्रतिमाएं हैं.
But I think the important point is that the Buddhist tradition, right back to the beginning, is quite clear that women as much as men can gain enlightenment.
Lekin mahatvapurna ki baat yahi hai ki Buddh dharm mein pehle se hi yahi kaha jata hai ki jaise purush buddhatva prapt kar sakte usi tarah se striyan bhi buddhatva prapt kar sakti.
And the Buddha had several women enlightened disciples.
Aur Buddha ki bahut sari shishyaen thi jinhone buddhatva prapt ki.
So I think we should be quite clear about that.
To mujhe lagta hai ki iske bare mein humne kafi spasht hona chahiye.
Even if the Buddha is usually presented as a male figure, there definitely are traditions of women who've gained enlightenment.
Bhale hi Buddha roop purush ke hi roop mein dikhaya jata hai, fir bhi kai sari aise mahilaen hain jinhone buddhatva ko prapt kiya.
In the Mahayana tradition, there are a number of female figures representing bodhisattvas.
Mahayana parampara mein kai aisi stri pratimaye hain jo Buddha bodhisattva ke roop mein dikhai jati hain.
And these figures are recognized as or considered as being fully enlightened.
Aur aisa mana jata hai ki ye jo pratimaye hain ye bodhisattva hai puri tarah se buddha hui hai.
And well, the one that most of you, any of you who know about these things will have heard of is Tara.
Aur shayad aapne ek bodhisattva ke bare mein suna hoga, woh hai Tara.
And Tara is considered to be the bodhisattva who represents compassion at its most intense.
Aur aisa kaha jata hai ki Tara jo hai ek bahut hi unche star ki karuna ka prateek hai.
But yes, we shouldn't think in Buddhism that only men can reach the highest point.
Buddhism mein hum aisa nahi sochte hai ki purush hi sarvoch prapti kar sakte.
Perhaps Buddhism has been traditionally inclined to see things something like that.
Aur shayad kuch parampara mein Buddhism ki aisa vichar kiya jata tha.
But the Buddha never said that women couldn't gain full enlightenment. In fact, he recognized the full enlightenment of some of his women disciples.
Lekin vastav mein Buddha ne kabhi aisa nahi kaha ki striyan buddha to prapti nahi kar sakti. Vastav mein kuch unke shishyaon ko unke unhone pehchana tha ki inhone buddha to prapt kiya.
So it'd be quite nice to see some of these female bodhisattva figures around in India.
Aur isliye bahut achhi baat hai ki hum Bharat mein kuch striyon ki bodhisattva pratimaye dekhte hain.
And although of course the complication is that they look a bit like Hindu goddesses.
Abhi thodi si samram ye hota hai ki ye jo bodhisattva ki pratimaye hain wo thodi Hindu devtaon jaisi dikhti hain.
But perhaps it's more important that it's quite clear women can gain enlightenment.
Lekin sabse mahatvapurna baat ye hai ye samajhna ki striyan bhi is tarah se buddha ko prapt kar sakti hain.
Samajh lo.
Why only Subhuti wears yellow kesa?
I haven't got his case. Well, I wear the yellow case because I'm an anagarika. That's because I've taken a lifelong vow of brahmacharya. And anybody can take that. Any order member who takes that then can become an anagarika.
और जो भी धर्मचारी इस तरह की प्रतिज्ञा करता है वह अनागारी कहलाता है.
Or anagarika.
या महिलाएं अनागारिका कहलाती
हैं. And there are a few other anagarikas and anagarikas in our order here in India.
और भारत में भी कुछ अनागारिक और अनागारिका है भारत में यहाँ पर.
And that's simply what it signifies.
और यही इसका महत्व है.
बस. हाँ. Oh, meaning the kesa. Ah. The kesa. Kesa is a Spanish, Japanese word.
Kesa ye Japanese shabd hai.
And it's a Japanese word that derives from Pali.
Aur ye jo Japanese shabd jo hai wo Pali shabd se bana hua hai.
It derives from the Pali or is it Sanskrit? I'm not sure. Kashaya. Sanskrit? From Sanskrit, kashaya.
To Sanskrit jo kashaya hai usse ye kesa ye shabd nirman
hua hai. It means robe.
Iska matlab chivar hota hai.
And in Japan, instead of wearing the full chivara, they wear a sort of abbreviated chivara, a mini chivara.
Japan mein pura chivara pehnne ki bajaye uska ek sankshipt roop jo hai wo Japani log pehante hain.
They wore their own costume with that kesar on top of it. And I believe that the kesar originally is modeled on the monk's belt.
और मुझे लगता है कि ये जो केसा है इसकी शुरुआत जो है भिक्षु जो जिस तरह का बेल्ट लगाते थे उससे शुरू हुई।
But when the order was founded, when our order was founded, we wanted to some way to signify the fact that we'd had that ordination.
तो जब संघ में पहले से दीक्षा शुरू हुई थी तब हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे हमारी दीक्षा हुई है ये जाहिर हो सके।
Some people wanted to wear full robes.
कुछ लोग चाहते थे कि वह पूरा केसा पहने।
But some people didn't want to do that.
लेकिन कुछ लोग ऐसा के पूरा चीवर नहीं पहनना चाहते।
Westerners don't like to wear uniform.
और पश्चिमी लोगों को इस तरह से गणवेश पहनना अच्छा नहीं लगता।
There's a bit that at least people coming into our movement to begin with were not very keen on that sort of thing.
और कम से कम आंदोलन में आने वाले लोग जो है इस तरह से गणवेश पहनना पसंद नहीं करते।
So they thought, well, what's the most elegant and simple way of signifying the ordination?
तो उन्होंने इस तरह से सोचने की कोशिश की कि दीक्षा को व्यक्त करने वाला सुंदर दिखे और संक्षिप्त हो ऐसा कोई चिन्ह हमें मिल सकता है।
So we borrowed this idea from the Japanese.
और इसलिए इस कल्पना को हमने जापानियों से ली है।
Our order is of course neither monastic nor lay.
हमारा संघ जो है ना ही विहारवासी भिक्षु संघ है या गृहस्थ संघ है।
It's for all who've committed themselves to the three jewels effectively.
ये उन सभी के लिए है जिन्होंने तीन रत्नों के लिए परिणामकारक रूप से प्रतिज्ञाबद्धता की।
You just have to be fully devoted to the Buddha, Dhamma and Sangha.
आपको केवल बुद्ध धम्म और संघ को पूरी तरह से समर्पण करना है।
So those who have not taken the Anagarika vow, they wear a white kesa.
और जिन्होंने इस अनागारिका की प्रतिज्ञा नहीं ली ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली है वह लोग सफेद केसा पहनते हैं।
And white of course means purity.
और सफेद का मतलब है शुद्धता।
The yellow or gold kesa signifies the bhikshu's robe.
और जो पीला केसा जो है वह भिक्षु के चीवर का प्रतीक है।
Some of the anagarikas do wear the full chivara.
कुछ अनागारिक जो होते हैं वो पूरा चीवर पहनना पसंद करते हैं।
I didn't want to wear that myself.
और मैं ये पूरा चीवर पहनना पसंद नहीं करता।
Partly I wasn't sure I'd be able to keep it on.
अब पहले ये मुझे मुश्किल लगती थी कि ये चीवर अपने शरीर पे बनाए रखना मुझे बड़ा मुश्किल काम है।
I think they're quite difficult to wear.
और पहनना भी बड़ा मुश्किल काम है।
But also I thought that it sets you apart too much.
लेकिन दूसरा मेरा विचार है कि चीवर पहनने से लोगों से कुछ दूरी तैयार हो जाती है।
And it makes people put you up on a pedestal.
और लोग फिर आपको बहुत बड़े ऊंचे आसन पे बिठा देते हैं।
And well, people put you up on a pedestal so easily.
और बहुत ही आसानी से लोग आपको ऊंचाई पर बिठा सकते हैं।
And they put you right on top of a pillar.
और जैकब से आपको खंभे के ऊपर भी बिठा सकते हैं।
And I've realized that if you're on top of a pillar, well, there's a long way to fall down.
और मुझे पता है कि इस तरह से अगर बड़े खंभे पे चढ़ा दिया तो नीचे गिरना बड़ा आसान हो जाए।
So I try to keep my feet as much on the ground as I possibly can.
और इसलिए मैं अपने पैर हमेशा जितने ज्यादा हो सके जमीन पर रखने की कोशिश करता हूँ।
Then there's not so far to fall.
अगर गिर भी गया तो ज्यादा नहीं लगेगा।
So then on the kesa there's this little symbol.
तो केसा पर ये एक छोटा सा चिन्ह है।
And this of course is the three jewels of Buddha, Dhamma and Sangha.
और ये तीन रत्न है बुद्ध धर्म और संघ।
There's gold for the Buddha jewel.
ये जो सुनहरा रंग है वह बुद्ध रत्न के लिए।
Blue for the Dhamma jewel.
नीला रंग धम्म रत्न के लिए।
And yellow for the Sangha jewel.
और जो पीला रंग है वो लाल रंग जो है वो संघ रत्न के लिए।
In the middle of the night the other night I realized that it's got another significance.
कल रात एक दिन मध्यरात्रि में मुझे और एक पता चला कि इसका और एक महत्व है।
Yellow means the Buddha.
पीला रंग बुद्ध का है।
Which means liberty.
इसका मतलब स्वतंत्रता।
Blue means Dhamma, which means equality.
और नीला रंग जो है धम्म का इसका मतलब समता।
And red means the Sangha, which means fraternity.
और लाल रंग जो है संघ जो बंधुत्व का रंग है।
And it works, doesn't it? If you think about it, it works.
Why the architecture of all stupas is a dome and what does it signify?
पुराने विहार गोलाकार क्यों बनाए गए हैं उसका महत्व क्या
है? Well, the dome is found in most stupas.
ये जो गोलाकार है ये बहुत ज्यादा स्तूपों में देखा जाता है।
So what was the first stupa?
तो सबसे पहला स्तूप कैसा था?
Well, the first stupa was the mound that was put over the remains of the Buddha.
So, पहला stupa ऐसा था, एक मिट्टी का ढिगोला जो बुद्ध के अस्थियों के ऊपर बनाया गया था.
When the Buddha died, his body was burned.
जब बुद्ध नहीं रहे, उनके शरीर को जलाया गया था.
And the relics from that burning were distributed to a number of different places.
और उनके जो अवशेष अस्थि के ये अलग-अलग जगहों पर ले जाए गए थे.
And a mound was raised over them.
और उन अस्थियों पर एक मिट्टी का गोल बनाया गया था.
So the semi, what do we call it? The what was it called? Yeah, this hemisphere, the hemisphere was originally just a mound of earth.
तो ये जो अर्धगोलाकार था, पूरी तरह से भरा हुआ मिट्टी से बना.
You still see these in ancient remains in Britain.
ब्रिटेन के जो एकदम प्राचीन ऐसे अवशेष है, उसमें ये देखा जाता
है. I did a solitary retreat in Wales recently.
वेल्स में मैंने अभी एकांतवास करके आया.
It was quite a long way from any other habitation.
और वो मनुष्यों के काफी दूर ऐसी जगह थी.
And it was just me and lots of sheep.
तो वहाँ पर केवल मैं था और बहुत सारे भेड़ी.
But every day I used to go to a walk to the top of a hill.
तो वहाँ पर मैं हर दिन पर्वत की चोटी पर घूमने जाता था.
And on the top of this hill was a dome, a hemisphere of earth.
और उस पर्वत की चोटी पर एक ऐसा अर्धगोलाकार था.
And it was an ancient burial site from 4,000 years ago.
4,000 साल पहले ही वह एक जहाँ पर समाधि दी जाती है मृत्यु के बाद में वो जगह.
And it was just that hemisphere, just like the stupa.
और वहाँ का जो अर्धगोलाकार था, वो पूरी तरह से स्तूप के जैसा था.
So originally the stupa was simply the mound raised over the relics of the Buddha.
तो मूलतः जो स्तूप है, बुद्ध के अवशेषों पर खड़ा किया गया एक अर्धगोलाकार मिट्टी का.
But in the course of Buddhist history, it developed into a really remarkable architectural feature.
लेकिन बौद्ध इतिहास में इसे बहुत ही सुंदर ऐसे वास्तु के रूप में उसको आकार दिया गया.
And each country developed its own particular kind of stupa.
और हर देश ने उसका अपना विशिष्ट स्तूप निर्माण किया.
All based on this hemisphere.
और सभी का जो आधार है वह अर्धगोलाकार रहता.
But developing in quite remarkable and beautiful ways.
लेकिन उसी को उन्होंने बहुत ही अद्वितीय और सुंदर ढंग से बढ़ाया, आगे बढ़ाया.
A few years ago I visited Burma, Myanmar.
कुछ साल पहले मैं बर्मा में गया था, म्यांमार में.
And I saw the remains of the great Buddhist city of Bagan.
Bagan. तो बगान नाम की एक बहुत ही सुंदर ऐसे बौद्ध शहर के कुछ अवशेष मैंने देखे.
There's 100 square miles with something like 20,000 different stupas.
तो करीबन 100 किलोमीटर चौरस किलोमीटर क्षेत्र में, माइल क्षेत्र में सैकड़ों स्तूप बने हैं.
And some of them are huge.
और उसमें से कुछ स्तूप जो है बहुत ही बड़े हैं.
And they're extremely beautiful.
और बहुत ही सुंदर है.
But they're based again on this mound shape.
और इन सभी का जो आधार है इस तरह के अर्धगोलाकार गोले पर.
So there's a whole interesting study there of different kinds of stupa.
तो अलग-अलग प्रकार के स्तूपों का वहां पर हम अध्ययन कर सकते.
But they just developed from the Buddha's burial mound.
लेकिन वो उसके जो निर्माण है वो बुद्ध के उस अवशेषों के ऊपर बनाए उस गोल के.
Eventually, the stupa came to represent the whole universe on all its levels.
अंत में ये स्तूपों का उपयोग जो है सभी विश्वों को उसमें क्या कहते हैं सभी विश्वों का निर्माण उसमें है इस तरह से दिखाए गए.
It represented all the elements that make up physical make up reality.
सत्य को निर्माण करने वाले, अस्तित्व को निर्माण करने वाले सभी घटकों से वह बना हुआ है, इस तरह से उसे बनाया गया.
So right at the base where we are is the earth element.
तो जहाँ जैसे हम खड़े हैं इस तरह से नीचे में सबसे पहले पृथ्वी धातु होता है.
Then the dome represents the water element.
और जो ये गोल होता है उसके ऊपर अर्धगोल उसे
water element.
जल या पानी का धातु कहा जाता है.
And then above that you have a sort of pyramid shape which you've got here.
और उसके बाद में पिरामिड का या त्रिकोणाकार आकार होता है.
And that represents fire.
और इसे यह अग्नि का प्रतीक है.
And then above that you've got a sort of saucer shape.
उसके ऊपर एक सॉसर के जैसा आकार होता है.
And that represents air.
और यह हवा का प्रतीक है.
And then you have a jewel or drop a flaming drop on the top, which represents space.
और उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है, जैसे पानी का एक बिंदु हो, उसे
आकाश.
आकाश धातु कहते हैं.
And well, this represents every single dimension of reality.
और इसमें सत्यता का जो हर एक या अस्तित्व का हर एक घटक रखा गया.
So it becomes a kind of meditation when you contemplate the stupa.
तो इस तरह से स्तूप पर आप जब एकाग्र होते हैं तो एक तरह का ध्यान बन जाता है.
It represents everything that makes up our physical bodies.
हमारे प्रत्यक्ष शरीर को निर्माण करने वाले हर एक घटक को इस तरह से हम उसमें देखते हैं.
Everything that makes up our experience.
और हर बात जो हमारे अनुभव को बनाती है उस हर बात को वहां पर देखा जाता है.
And it represents energy on different levels of refinement.
और शुद्धता की अलग-अलग स्तर पर शक्ति को वहां पर व्यक्त किया जाता है.
It's as if when you're meditating you slowly rise up through the stupa.
तो जैसे कि जैसे आप ध्यान कर रहे हैं और धीरे-धीरे आप इस स्तूप की ऊपर की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं.
So it'd be very good one time to have a retreat just on the stupa.
तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर केवल स्तूप पर हम कोई एकाग्र शिविर ले सके.
We could learn about the stupa.
जहां पर स्तूप के बारे में हम कुछ सीख सकें.
And learn about Dhamma through that symbol or image.
और इस चिन्ह के माध्यम से हम कुछ धम्म सीख सकें.
If you, any of you are interested, there are some very good books on this subject.
अगर आप में से किसी को दिलचस्पी है तो इस विषय पर काफी अच्छी किताबें मिलती हैं.
And Bhante Sangharakshita has a lecture on the symbolism of the stupa.
और बंते संग्रक्षी जी ने इस स्तूप के चिन्हों पर एक प्रवचन दिया हुआ.
I don't think it's in, I think it's only in English. It's not in Hindi or Marathi, is it?
तो लगता है कि केवल अंग्रेजी में है, मराठी में नहीं.
Oh, it's in Budiyan, apparently, in Marathi.
तो कहते हैं कि मराठी में भी वह उपलब्ध है.
घर के लोगों के विरुद्ध जाकर धर्म का पालन व आचरण करना क्या सही है? अगर हाँ तो ऐसा करने से हम उनका दिल दुखा देते हैं और नहीं तो हम खुद की भावनाओं और अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर उनके लिए जी रहे हैं. इसके बारे में विस्तार से बताइए.
Can we practice the Dhamma by going against our families? If we go against them, then we hurt them. And if we do with their, according to their desires, then we
can't practice
the way we want. So please tell us in details.
Mujhe malum nahi. This is a very dangerous question. If I answer in one way, I get into trouble with the parents. If I answer in the other way, I get into trouble with the children.
अगर मैंने एक तरफ से जवाब दिया तो माता पिता मुझे तकलीफ देंगे और दूसरी तरफ से जवाब दिया तो बच्चे लोग तकलीफ देंगे.
So who shall I get into trouble with?
तो अभी किससे तकलीफ सहन करना अच्छा होगा?
Probably the safest thing is to get into trouble with everybody.
तो शायद ऐसा होगा कि दोनों से तकलीफ सहन करना ज्यादा अच्छा होगा.
But yes, it's a very important and difficult question.
तो ये बहुत ही महत्व का और थोड़ा कठिन ऐसा प्रश्न है.
In the West, we approach this in a rather different way.
पश्चिम में इस प्रश्न की तरफ हम बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं.
In the West, we rely less on our families.
पश्चिम में हमारे परिवार पर हम बहुत ही कम अवलंबित रहते हैं.
Because, well, we live in a wealthy country.
क्योंकि हम बहुत ही अमीर ऐसे देश में रहते हैं.
The state offers us a great deal of welfare quite free.
जो हमारा राष्ट्र है बहुत ही मुक्त खुले तौर पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं.
Everybody gets a pension from the state.
हमारे देश की तरफ से हर एक को पेंशन मिल सकता है.
So most people don't have to support their parents.
इसलिए बहुत सारे लोगों को अपने माता पिता को की तरफ उनको पैसा देना जरूरी नहीं होता.
People don't rely on their families for social welfare.
और लोगों को अपने परिवार और बच्चों पर अपने कल्याण के लिए अवलंबित नहीं रहना पड़ता.
So it's easier for people to follow their own desire as regards the Dhamma.
तो धम्म के संबंध में लोगों को अपनी इच्छा का पालन करना बड़ा आसान हो जाता है.
If your parents don't like you to follow the Dhamma, well then you just go and do it.
तो अगर आपके माता पिता वहां पर अगर आपके धम्म के आचरण के पक्ष में नहीं है तो आप उनको छोड़कर जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं.
But it's not so easy here.
लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है.
The family is so much more important in social life.
सामाजिक जीवन में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर.
And you have to be very careful not to cut yourself off from family.
और अपने आप को परिवार से काटना इतना आसान नहीं होता.
And the family needs to be respected and honored.
और परिवार का भी आदर और सम्मान करना आवश्यक होता है.
So I think you probably have to try to follow a middle way.
तो मुझे लगता है कि इस तरह से मध्यम मार्ग का अनुसरण करना बड़ा अच्छा होगा.
Don't give up your desire to practice Dhamma.
आपकी अपनी जो धर्म का पालन करने की इच्छा है उसे मत छोड़िए.
Do as much as you can without frustrating or irritating your parents.
अपने माता पिता को दुख या उनको ज्यादा निराश न करते हुए आप जितना कर सकते हैं कोशिश करिए.
But keep taking them into consideration.
लेकिन उनके तरफ जितना ध्यान देने की आवश्यकता है उतना ही दीजिए.
So I can't really answer very definitely because it depends on the particular circumstances.
क्योंकि मैं इसका बहुत ही पक्का जवाब तो नहीं दे सकता है क्योंकि हर परिस्थिति पर यह अवलंबित है.
I suppose one thing one should be appreciative of is that one's parents probably want the best for you.
मुझे लगता है कि इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमसे कोई और ज्यादा अच्छी होने की अपेक्षा रखते हैं.
They might not understand that in the same way as you do.
शायद वह उसी ढंग से नहीं समझते बातों के जैसे आप समझते हैं.
But at least one should appreciate that they want the best for you.
लेकिन हमने इस बात को पसंद करना चाहिए समझना चाहिए उनकी कि वह आपके लिए कोई अच्छा हो यही इच्छा होती है उनकी.
My own feeling is that India is going to be facing a bit of a crisis in this area.
मुझे लगता है मेरी ऐसी भावना है कि अभी इस क्षेत्र में भारत में कुछ कठिन समस्या निर्माण होगी.
My impression is that India is changing very, very rapidly.
मेरा देखना यह है कि भारत बहुत ही तेजी से बदल रहा है.
And that younger generations see things in a quite different way to the older generations.
और ये नई जो पीढ़ी है वो अपने पुराने पीढ़ियों से बहुत ही अलग ढंग से दुनिया को देखेगी.
And I think there will be some tension about this.
और मुझे लगता है कि ये जो तनाव है इसकी वजह से काफी निर्माण होगा.
It's what we in the West call the generation gap.
और इंग्लैंड में हम जिसे जनरेशन गैप कहते हैं पीढ़ियों का अंतर.
And people from both sides of that gap need to put a lot of trouble into trying to understand each other.
और ये दोनों पक्ष के लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए बहुत सारी शक्ति लगाना जरूरी होता है.
And trying to sympathize with each other.
और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना भी जरूरी होता है.
Parents need to realize that children see things in a quite different way now.
माता पिता को ये बात समझना जरूरी होता है कि बच्चे कई अलग ढंग से दुनिया को देखते हैं.
And children need to realize that parents have their interests at heart and see things in their way with their experience.
और बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि अपने माता पिता अपने लिए दिल से कुछ सोचते हैं और वो बातों को अलग ढंग से.
So I think that as an individual you have to try to balance these two factors.
और मुझे लगता है कि व्यक्ति करके आपको इन दोनों बातों को संतुलित रखना जरूरी है.
Your concern for your parents and your family and your desire to practice the Dhamma.
आपकी अपने परिवार की चिंता और आपके धर्म का आचरण की इच्छा.
And individually you're going to have to work out how to move forward with that balance.
और स्वयं अपने आधार पर खुद के बल पर इस पर कैसे कार्य कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए.
But I think it's important that everybody in India realizes the pace of change is going to put strains on family life.
मुझे लगता है कि भारत में हर एक को अब ये पता होगा कि परिवार के जीवन में कुछ तनाव जो है वह सहजता से आ सकता है.
त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के कार्य शहरा पर्यंत मर्यादित है. या तहसील पर्यंत सुद्धा पसरले नाही. ग्रामीण भागात तर काहीच नाही. याचं काय? तुम्ही म्हणाल की ग्रामीण भागातील लोकांनी शहरात यायला पाहिजे. परंतु ते जर आले तर त्यांची 50 रुपये रोजी जाईल आणि ते उपाशी राहतील. यात आपण काय करू शकाल याची माहिती आवश्यक आहे. धम्मक्रांतीसाठी शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील जनता जास्त प्रभावी राहू शकते याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
First Hindi. Okay.
तो सबसे पहले मैं ये सवाल हिंदी में बताता हूँ. वो कहते हैं कि त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ का कार्य शहरों में ही मर्यादित दिखता है. ये तहसील के स्तर पे भी नहीं जाता है और गांव में तो नहीं जाता है. और शायद आप कहेंगे कि गांव के लोगों ने शहर में आना चाहिए धम्म पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी रोजी जो है, रोजी रोटी का सवाल है, उनके हर दिन की कमाई उसमें नष्ट हो सकती है. सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें लगता है कि धर्म क्रांति शहर से ज्यादा गांव में अच्छी तरह से हो सकती है, वहां की जनता ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है.
मतलब
work of TBMAG is limited to cities only, and this work is not even spreading to the towns, tertial towns, let alone the villages are very much untouched. So you might say that
I was though.
You might say that these villagers should come to cities, but what about their earnings? And we think that this Dharma Kranti can be very effective in villages.
Yeah. Well, I very much agree.
So, main aapse kafi sahmat hu.
And it's not completely true that we're only confined to the big cities.
Aur ye bhi puri sach baat nahi hai ki hum keval shahar mein hi kaam karte hain.
For instance, just the other day, I gave a talk in Palasgaon.
तो कहते कि कुछ ही दिनों पहले मैं पलसगांव में एक प्रवचन देकर आया हूं.
And Palasgaon is not a big city.
और पलसगांव एक कोई बड़ा शहर नहीं है.
I think about 2000 people live there.
तो शायद ये ऐसा गांव है जहां 2000 लोग रहते हैं.
It's where three order members come from.
और इस गांव से तीन धम्मचारी आए हुए हैं.
But it's a small village.
तो एक छोटा गांव है.
And we've got activities in a number of different villages around in Vidarbha and in other states, in other parts of the state.
विदर्भ में बहुत सारे गांव में हमारा कार्य चलता है और राज्य में अलग जगहों पर भी चलता है और अन्य राज्यों में भी चलता है.
And yes, I think that there's a lot of work to be done in the villages.
तो मुझे लगता है कि गांव में बहुत ज्यादा कार्य करना संभव है.
I think that the villages especially need work because people suffer very strong oppression in the villages sometimes.
तो मुझे लगता है कि गांव में ज्यादा कार्य होना चाहिए क्योंकि गांव में लोग ज्यादा शोषण के शिकार हो सकते हैं.
So I personally would very much like to see more work done in the villages.
और इसलिए मैं व्यक्तिशः ये चाहता हूं कि गांव में ज्यादा कार्य होना चाहिए.
But who's going to do that work?
तो ये काम कौन करेगा?
हम लोग, yeah. We must do it. Well, somebody doing something, yeah.
तो हमने ये काम करना चाहिए और कोई लोग कहते हैं कि वो करते हैं.
People sometimes say TBMSG should do this.
लोग कहते हैं कि TBMAG ने ये काम करना चाहिए.
Why doesn't TBMSG do that?
और ये TBMAG ये काम क्यों नहीं करती?
TBMSG ought to do this.
और TBMAG ने ये करना ही चाहिए.
Well, who is TBMSG?
अब ये TBMAG है कौन?
Is it me? Have I got to do it all?
क्या ये मैं हूँ कि मैंने सब करना चाहिए?
It's us.
ये हम सब हैं.
So if you believe that work needs to be done.
अगर आपका ये विश्वास है कि काम होना चाहिए,
well, do it.
तो आप करिए.
We've talked this morning about a Moga City action plan.
हमने अभी इसके पहले सवेरे अमोघ सिद्धि का कृति का नियोजन देखा है.
Well, that can be carried out in the villages as much as in the towns and the cities.
तो ऐसा ही कार्य हम गांव में कर सकते हैं जितना शहरों में कर सकते हैं.
It probably makes a lot of sense to start in the cities.
शहर में इसको शुरू करना इससे शायद ज्यादा फायदा होगा.
After all, there are a lot of people in the cities.
क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग होते हैं.
And people are a bit freer in the cities.
और शहर के लोग थोड़े से ज्यादा खुले होते हैं.
And there are also people with resources in the cities.
और शहर में कुछ संसाधन भी उपलब्ध होते हैं.
But from the cities, we should go to the towns.
लेकिन शहरों से हमने छोटे गांव में जाना चाहिए.
We should go to the district places and then the taluka places.
जो जिला है, तालुका है, इस जगह पे हमने जाना चाहिए.
And then we should go just to each village.
और बाद में हर गांव में भी हमने जाना
चाहिए. So there should be like a fountain trickling down.
और जैसे पानी का ये होता है, फाउंटेन होता है जो नीचे नीचे जाता है.
So I'd like to see each in each state that the district places and then the taluka places and then the villages are tackled.
तो इस तरह से हमने नीचे जाना चाहिए, पहले जिले की जगह पर, बाद में गांव में, और उसके बाद में छोटे गांव.
But yes, if you actually look at our work, there is quite a lot going on in the villages and in the smaller towns.
तो अगर हम आप इस हमारे काम की तरफ देखते हैं तो बहुत सारा गांव में और छोटे गांव में काम चल रहा है.
But I'd certainly like to see much more done there.
लेकिन निश्चित रूप से मैं और ज्यादा काम इस तरह से देखना चाहूंगा.
But who's going to do it?
लेकिन ये करेगा कौन?
हम लोग.
धम्म का इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद आज भी अपने धर्म के लोग क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार कर रहे हैं और उनके ऊपर हिंदुत्व का भी प्रभाव, इससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो अगर हमारे आस पड़ोस मित्रगण ऐसा बर्ताव करते दिखाई देते हैं तो हम उन्हें कैसे समझाएं ताकि वो फिर अपने धर्म के बारे में जागरूक हो जाए।
Many Buddhists are getting converted into Hinduism,
Christianity,
and then some are influenced by Hindus.
Uh-huh.
So if there are some of our neighbors involved in it, how we are going to, how can we help them?
Right.
And how we can explain things to them.
Yes, I think that this is a phenomenon we see.
तो इस घटना को हम देख सकते हैं.
We see people who have been Buddhists for a generation or more becoming Christians or just falling back into Hinduism.
हम ये देखते हैं कि जो बौद्ध होते हैं एक या दो पीढ़ियों से वो क्रिश्चियन होते हैं या हिंदू धर्म के प्रभाव में आते हैं.
And you can't really blame them.
आप उन्हें कोई दोष नहीं दे सकते.
Because they've never really had much of a chance to understand Buddhism.
क्योंकि उन्हें ऐसा कभी मौका नहीं मिला है बौद्ध धर्म समझ लेने का.
That's I think why people are slipping away into Christianity and back into Hinduism.
और इसी वजह से मुझे लगता है कि लोग क्रिश्चियन धर्म में और फिर से हिंदू धर्म में वापस जाते हैं।
We can't blame the Christians or the Hindus.
तो हम क्रिश्चियनों को या हिंदुओं को इसका दोष नहीं दे सकते।
It's the Buddhists we must blame.
तो बौद्धों को ही इसका हमें दोष देना चाहिए।
We haven't done enough to help people.
लोगों को मदद करने के लिए हमने पर्याप्त कार्य नहीं किया है।
हम लोग, we haven't done enough.
हम लोगों ने काम नहीं किया।
We need to go to people and tell them what Buddhism really means.
हमने लोगों के तरफ जाना चाहिए और बताना चाहिए कि बौद्ध धर्म का अर्थ क्या है।
Well, they've tried to be Buddhists.
उन्होंने प्रयास किया है बौद्ध रहने का।
All they know it means is putting a garland round Baba Sahib's statue.
अब उसका मतलब केवल उतना उनको मालूम है कि बाबा साहब के फोटो को हार पहनना।
They know it means bowing before the Buddha.
उनको ये इतना पता है कि बुद्ध के सामने झुकना।
They don't really know what the three refuges mean.
उनको सही में ये पता नहीं कि त्रिशरण का मतलब क्या है।
They don't really know what the five precepts mean.
पांच शील क्या है इसका उन्हें पता नहीं है।
So the Christians come along and well, the Christians are very well organized.
अब क्रिश्चियन लोग आते हैं वो काफी अच्छी तरह से व्यवस्थापित होते हैं।
They've got a lot of money behind them.
और उनके पीछे बहुत सारा पैसा होता है।
And they say Jesus Christ will save you.
और वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट आपको बचाएगा।
Don't worry, Jesus Christ will save you.
चिंता मत करिए, यीशु आपको बचाएगा।
Just take him into your heart, you'll be saved.
आप उसे अपने हृदय में लाइए, वो आपको बचा लेगा।
You don't have to do any work, you just have to take Jesus Christ.
आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यीशु को मानना है।
And there's some paisa as well.
और पैसा भी मिलता है।
So of course they convert.
तो निश्चित ही वो परिवर्तित हो जाते हैं।
So if people haven't heard Buddha Dhamma, how can we expect them to practice it?
तो अगर लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं सुना है तो हम उनसे कैसी अपेक्षा कर सकते हैं उसका आचरण करने?
And they don't understand how to get what they want in life.
और वो ये भी नहीं समझते हैं कि अपने जीवन में उन्हें क्या चाहिए।
So they think, well, maybe Ganesh will help.
तो वो सोचते हैं कि शायद गणेश जी मदद करेंगे।
So a few coconuts, some incense, and well, you might pass your exam.
अभी दो चार नारियल फोड़ देंगे, थोड़ी सी अगरबत्ती लगाएंगे तो शायद परीक्षा में पास हो जाएंगे।
If only it was that easy to pass exams.
अगर इतना आसान होता परीक्षा में पास होना तो।
But actually, you have to work hard, of course.
लेकिन निश्चित ही आपको तो प्रयास करना पड़ता।
So I think that if people are converting to other religions, it's because Buddhists haven't done enough.
तो मुझे लगता है कि लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, ये इसलिए है कि बौद्धों ने अपने आप पर अच्छा काम।
So we need our Amoga Siddhi action plan urgently.
और इसलिए हमारे जो अमोग सिद्धि का एक्शन प्लान है वो तुरंत अमल में आना चाहिए।
We need to get out there and help people to understand the Dhamma.
हमें बाहर आना चाहिए और लोगों को धर्म समझने के लिए मदद करनी चाहिए।
So I'd say to somebody who is thinking of converting to Christianity, do you really know Buddhism?
तो जो भी क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है उसे आप ये बोल सकते हैं कि क्या आपको सही में बौद्ध धर्म पता है?
Now, before you convert to Christianity, please just try and find out about Buddhism.
तो क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करने के पहले कृपया आप पहले देखिए कि बौद्ध धर्म क्या है।
Well, people have got still tremendous faith in Baba Sahib.
लोगों की अभी भी बाबा साहब पर बहुत बड़ी श्रद्धा होती है।
So you can say, well, Baba Sahib didn't convert to Christianity.
आप ये बता सकते कि बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन नहीं किया।
He looked very carefully at Christianity.
उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से क्रिश्चियन धर्म की तरफ देखा।
But he chose Buddhism.
लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को चयन किया।
So please think very carefully.
इसलिए कृपया कृपा करके
Just spend some time learning about Buddhism. If you find in the end that Christianity is better, good luck to you. I won't blame you. But first of all, before you convert, find out about Dhamma. You can't reject something until you really know what it is. It's a bit like offering somebody two glasses with drinks in them. And you say to them, well, do you want this one or this one? Well, they can't say which one they want until they know what's in them. So find out what's in both glasses before you choose. So this is what I would suggest you say. My analysis is that people are converting because they don't understand what Buddha Dhamma is really about.
And
the Christians are very energetic. Actually, all over the world, all over Asia, Buddhists are converting to Christianity. In Korea, in Japan, in Sri Lanka, Buddhists are converting to Christianity. And I think again, it's because people don't really know what Buddha Dhamma is. Faith is not enough. You need to understand the Dhamma and practice it. So I think that's all you can say, really. There's no point in saying, oh, Christianity is no good. Or I've got a friend who was once a Christian, he converted to Buddhism. That's not very convincing. But you can say, make a proper informed choice.
लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उनको चुनने के लिए एक सही रास्ता दिखा सकते हैं.
Last one. Yeah. You got a good last one?
भारतीय बौद्ध महासभा जैसे अन्य संगठन या इगतपुरी जैसे अन्य ध्यान साधना केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आपका संबंध समन्वय प्रस्थापित करने का क्या प्रयास चल रहा है?
तो भारतीय बौद्ध महासभा है या इगतपुरी के गोयनका गुरुजी का कार्य है, इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर
अंग्रेजी में,
यस,
थैंक यू.
देयर आर अदर बुद्धिस्ट लाइक भारतीय बौद्ध महासभा और गोयनका गुरुजी, हिज मेडिटेशन सेंटर
इगतपुरी.
What efforts on international or national level you are doing to keep harmony with them?
Yes. Well, in our order, we do have good relations with a number of different Buddhist organizations.
Sangha ka kai anya bodha samsthao se bahut sara sambandh, acha sambandh hai.
For instance, Dhammachari Loka Mitra and I visited Goenkaji at Igatpuri about 5 years ago. And we had a very, very friendly and useful visit. And we found that Mr. Goenka was a a very sympathetic man, that he very much appreciated TBMSG's work.
और मैंने देखा कि गोयनका जी बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण थे उन्होंने त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के कार्य की बहुत ही उन्होंने सराहना की
and I personally came to the conclusion that he's a very sincere Buddhist and that he's completely against caste
और व्यक्तिशः मुझे ये पूरा भरोसा है कि वो बहुत ही सच्चे बौद्ध है और वो पूरी तरह से जाति प्रथा के विरुद्ध है
and I think he's doing very very good work
और मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं
and he said that he thought that He was working on in one way, and we were working in a complementary way.
तो उन्होंने कहा कि हम एक तरह से काम करते हैं और आप एक दूसरी तरह से काम करते हैं.
And that's what I believe too.
और मेरा भी यही विश्वास है.
And he wrote to Bhante Sangrakshita and expressed his pleasure at having contact.
और उन्होंने Bhante Sangrakshita को पत्र लिखा और अपना ये अच्छा संपर्क प्रस्थापित हुआ इसलिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया.
And as far as Bhartya Bauda Mahasabha goes, but in different places we seem to have different kinds of relations.
तो जहाँ तक भारतीय बौद्ध महासंघ का सवाल है, उनके साथ में अलग-अलग जगहों पर हमारे अलग-अलग संबंध हैं.
From our side, we're very willing to cooperate with anybody who's trying to do good Dharma work.
हमारी तरफ से जो भी अच्छा धर्म का कार्य करता है, उसके साथ सहकार्य करने के लिए, साथ में काम करने के लिए हम बहुत ही तैयार हैं.
We're all just Buddhists.
हम सभी केवल बौद्ध हैं.
And we just need to work together.
और हम सभी को केवल साथ में काम करने की जरूरत है।
There's too much work for us to quarrel over it.
और बहुत काम करना है और झगड़े में समय बिताना उतना अच्छा नहीं है।
And I was very, very pleased the other day. I gave a talk in Badnera.
तो मुझे बहुत आनंद हुआ एक दिन मैंने बडनेरा में एक व्याख्यान दिया।
And that's a town just that's part of Amaravati.
और ये अमरावती का एक दूसरा हिस्सा है
And apparently it was organized by all the different Buddhist groups in Badnera.
और बडनेरा के अलग अलग बौद्ध गुटों ने इसका आयोजन किया था
And for instance, including Bhartya Bauda Mahasabha.
और उसमें भारतीय बौद्ध महासभा का भी संबंध था
And many other groups from round about.
और बहुत सारे अलग अलग गुटों का उसमें समावेश था
So I thought that it was a really good example of Buddhists working together.
और मुझे लगा कि ये बौद्धों ने एक साथ काम करने का बहुत ही अच्छा उदाहरण था
And I promised them that I would tell everybody about their unity.
और मैंने उनको वचन दिया था कि मैं सभी को उनकी एकता के बारे में बताऊंगा
Because it's a really good example. So many Buddhists just fight each other.
बहुत सारे बौद्ध लोग आपस में झगड़ा करते हैं
While we're fighting each other, the Christians and the Hindus come in and take people away.
अब हम आपस में झगड़ा करने का काम करते हैं
We can't blame them.
अब उनको हम दोष नहीं दे सकते.
It's a bit like two people fighting over some food.
जैसे कि दो लोग कोई खाने के बारे में झगड़ा कर रहे हैं.
And somebody else just comes along and eats it.
और कोई तीसरा आता है और खा लेता है.
But you can't blame them.
अब ये खाने वाले को तो
It was just lying there.
क्योंकि ये खाना तो ऐसा ही पड़ा हुआ है.
So I think it's really important that Buddhists do work together.
इसलिए मुझे लगता है कि बहुत महत्व की बात है कि बौद्धों ने एक साथ काम करना है।
We might not always agree with each other.
हम शायद हमेशा एक दूसरे के साथ सहमत नहीं रहेंगे।
But we can disagree in a friendly way.
लेकिन हम एक मैत्रीपूर्ण ढंग से असहमत भी हो सकते हैं।
As we say in English, we can agree to disagree.
तो अंग्रेजी में कहते हैं कि असहमत होने के लिए कम से कम सहमत हो सकते हैं।
There are many, many different paths within Buddhism.
तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं।
We don't have to just insist that we've got it right and everybody else is wrong.
तो हमें इस तरह का आग्रह नहीं धरना चाहिए कि हमारा जो है वही सही है बाकी सबका गलत है।
The only way to enlightenment is TBMSG.
ऐसा कहना कि बुद्धत्व के लिए जाना है तो एक ही मार्ग है वो है त्रैलोक्य बौद्ध मार्ग।
It's not like that.
ऐसी बात नहीं।
That's just not Buddhism.
तो ये बौद्ध धर्म नहीं है।
The Buddha Dharma is very tolerant, very open, very broad.
तो बौद्ध धर्म बहुत ही सहनशील है और बहुत ही विशाल है।
So we do in the West. We have an organisation which looks after liaison with other Buddhist groups.
तो पश्चिम में हमारा एक ऐसा कार्यालय है जो जगत के अन्य बौद्ध संस्थाओं के साथ में संपर्क बनाए रखने के लिए कार्य करता है.
And we try to keep in good relations with as many people as possible.
और जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो हम ज़्यादा अच्छा संबंध रखने की कोशिश.
I don't think we've always been as friendly as we should be.
और मुझे नहीं लगता है कि जितना ज्यादा मैत्रीपूर्ण हमने रहना चाहिए उतना हम नहीं रहे
आई थिंक समटाइम्स इन द पास्ट वी हैव बीन क्वारलसम टू
पुराने हमारे इतिहास में हमने भी कुछ थोड़ा सा झगड़ा किया है
बट वी आर ट्राइंग नॉट टू डू दैट नाउ
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये झगड़ा हम अब नहीं करेंगे.
And we need to give that message quite strongly.
और इसी संदेश को हम बहुत ही अच्छी तरह से देना चाहते हैं.
So I'm glad that question was asked.
तो मुझे आनंद हुआ कि ये सवाल पूछा गया.
And I feel there's too much argument amongst Buddhists.
तो मुझे लगता है कि बौद्धों के बीच में बहुत ही ज्यादा विवाद होते हैं.
But just the other day I happened to come across a letter written by Baba Saheb in 1942.
1942 में बाबा साहब ने लिखे हुए एक पत्र को मैंने देखा था.
It was after a big conference in Nagpur.
नागपुर में एक बहुत बड़ी परिषद हुई थी उसके बाद में ये पत्र उन्होंने लिखा था.
And he made three points.
उन्होंने उसमें तीन मुद्दे लिखे.
He said, "Don't quarrel."
उन्होंने कहा कि झगड़ा मत करो.
Then he said, "Remain united."
और दूसरी बात उन्होंने कही कि एकता से रहो.
And then he said, "Don't stop until the work is complete."
और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जब तक काम समाप्त नहीं होता मत रुको.
And that might be good. That might be good to put into our Amoga City action plan.
तो मुझे लगता है कि ये बात अमोघ सिद्धि एक्शन प्लान में लिखना बहुत ही अच्छा होगा.
At the bottom, don't quarrel, remain united, keep going until the work is done.
तो हम नीचे लिख सकते हैं कि झगड़ा मत करिए, एक रहिए और जब तक काम समाप्त नहीं होता रुकिए मत.
Anyway, I'm sorry, I'm not going to keep going until this work is done.
तो लेकिन एक बात है कि ये काम जब तक पूरा नहीं होता मैं तो चलने आगे चलने वाला नहीं हूँ.
We might be going until 2005 if I kept going.
अगर मैं ऐसा ही ये सवाल के जवाब देता रहा तो 2005 निकल जाएगा.
So all of you who've asked questions which I haven't answered, I'm very sorry.
तो आप में से इतने सारे लोगों ने ये सवाल पूछे हैं मैं इनका जवाब नहीं दे सकता हूँ इसलिए मुझे काफी खेद है.
I will get somebody to tell me what the main questions are and I will try to answer them in other ways over the next year.
तो अगले साल मैं ये सवाल पहले किसी से सुन लूंगा और उसके जवाब देने की अलग अलग ढंग से कोशिश करूंगा.
And if you're still puzzled, well, you'll have to come on the next retreat.
अगर फिर से आपके मन में सवाल बने ही रहते हैं तो आपको अगले शिविर में आना पड़ेगा.
But thank you very much indeed for asking these questions.
तो आपने ये सवाल पूछे इसमें बहुत बहुत आभारी है आपके.
It shows that there's so many questions, it shows there's a lot of desire to understand the Dhamma more deeply.
तो इतने सारे सवाल है लगता है कि धम्म समझने की आपकी इच्छा बहुत तेज है.
And I'm very pleased indeed that that's the case.
और ऐसा है इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ.
Good.
धन्यवाद.